जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Jaya Prabhupad. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol.
जय हो विष्णुपाद परमहंस आचार्य अष्टोत्तर छत्री श्रीमद अभय चरणारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद परम स्वरूपाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की श्री श्री कृष्ण बलराम की संवेद गौर भक्तवृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की शीला जगदीश पंडित त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की नेताई गौर हरि प्रेमांदे ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 3 श्लोक संख्या 14. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. सर्वेन्द्रिये गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया योक्ताय सदा भासाय ते नमः. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद के द्वारा. जगत गुरु शीला प्रभुपाद की शब्दार्थ दोहराइए. सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे सभी इंद्रिय विषयों के दृष्टा में है. सर्व प्रत्यय हेतवे सभी संशयों के समाधान और जिनके बिना सभी असमर्थताएं तथा सारे संदेह हल नहीं किए जा सकते, असत्ता, असत्य या भ्रम के प्रकट होने से, छाया या समानता के कारण, उक्ताया कहलाया सत, सत्य का आभासाय प्रतिबिंब के लिए ते आपको नमः नमस्कार करता हूं। अनुवाद दोहराइए। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपसे मिलती जुलती छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। तात्पर्य श्रवण करें। इस श्लोक का भावानुवाद इस प्रकार होगा। इंद्रिय कर्मों के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं। आपके निर्देश के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में पुष्टि हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। आप हर एक के हृदय में स्थित हैं और आपसे ही स्मृति तथा विस्मृति आती है। छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहता है, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तथा उसे स्मरण नहीं दिलाते, तब तक वह अपने जीवन के छाया रूप आभासी उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकता। बद जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिलाया जाता है। एक जन्म में बद जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, चूंकि वह इस जगत का कुछ ना कुछ भोग करना चाहता है, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में इसका स्मरण दिलाते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। चूंकि बदजीव आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उसे ऐसे अवसर प्रदान करते रहते हैं जिससे वह आपको सतत भूला सकता है। अतएव आप बदजीव के नित्य निर्देशक हैं। चूंकि आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है। चरम सत्य तो आप ही हैं। मैं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सर्व प्रत्यय हेतवे शब्द की व्याख्या शीला विश्वनाथ शक्ति ठाकुर ने की है। वह कहते हैं कि फल कार्य के कारण की झलक मिल जाती है। उदाहरणार्थ मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतः पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाज लगा सकता है कि ये किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। भौतिक जगत की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे श्री भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्री युद्धपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे हरे कृष्णा। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सब वैष्णव भक्तों के बीच में कुछ भगवान के बारे में कहने का अवसर मिल रहा है, तो आप सबसे आप कृपा की याचना करता हूँ। यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं और ब्रजवासी सब है ना, ज़्यादातर आप सब भक्त लोग ब्रज में या तो पहले से हैं या फिर शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप सब बहुत कृपा कीजिए मेरे ऊपर। या तो मुझको भी नहीं आ रही अरे कृष्णा थोड़ा और बढ़ाइए आवाज़, हम लोगों को मॉनिटर की भी आदत हो चुकी है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी वैष्णव भक्तों से कृपा की याचना करता हूँ कि आप सबकी प्रीति के लिए ये श्रीमद् भागवतम से कुछ सुना सकूँ। एक्चुअली मैं कल का लेक्चर था, कल का श्लोक पढ़ा था, आज सुबह अनाउंसमेंट से पता चला कि आज का लेक्चर है। फिर भी प्रयास करेंगे, आप सबके आशीर्वाद से सफलता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पटना के पास एक स्थान है जिसका नाम है कोन्हारा घाट। आप लोग सुने हाजीपुर, सुने आप लोग केले, केले बहुत प्रसिद्ध है, हाजीपुर के केले बहुत प्रसिद्ध है। तो एक मान्यता है कि वहीं पर कोन्हारा घाट है, वहीं पर यह गजेंद्र की लीला हुई थी। कुछ कह रहे हैं, तो गजेंद्र का जो लीला, भगवान जो रक्षा किया गजेंद्र की, तो वो कोन्हारा घाट वही प्लेस है। हम लोगों को मौका मिला था वहाँ पर काफी दिन ये गजेंद्र की ही लीला कहने का। तो जब गजेंद्र और ग्रहा का युद्ध छिड़ा, युद्ध मतलब गजेंद्र तो वहां पर क्रीड़ा करने के लिए गए थे, जल के भीतर गए थे पानी पीने के लिए। अब जानते हैं हाथी का शरीर बहुत मोटा होता है और मोटे शरीर जो होते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी कम लगती है। बहुत सारे मोटे लोगों को देखेंगे सर्दी में जैकेट नहीं पहने कुछ नहीं, और पतले लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मोटे शरीर को गर्मी ज़्यादा लगती है और कामी शरीर होता है हाथी का। तो गजेंद्र जो थे, तो गर्मी का दिन था और पर्वतों से रिफ्लेक्ट होके बहुत सूर्य का प्रकाश गहन रूप से एक ही जगह आ रहा था। तो बहुत प्यास लगी थी, गर्मी लग रही थी, तो पानी पीने के लिए चले गए। और पानी पीने के लिए चले गए, वहीं पर पानी पी के प्यास तो बुझ गई, और उसके बाद भी लगे रहे अब सूंड में पानी भरते, अपनी पत्नियों के ऊपर शावर करते, सब जल क्रीड़ा आनंद क्रीड़ा अपनी चालू की है। और उसी क्रम में भागवत के अनुसार तो कुपित होके क्रोध में भर के एक ग्रहा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, मतलब मुंह में दबोच लिया। तो युद्ध हुआ मतलब गजेंद्र अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, यही युद्ध था कि किसी तरीके से डिफेंस कर रहे थे, किसी तरह अपने को बचा लूं इस ग्रह के चुंगल से निकाल लूं। तो मैं ज्यादा भूमिका नहीं रखूंगा क्योंकि आप लोग रेगुलर इस सब लीला को सुने हैं। तो गजेंद्र बार बार प्रयास करते थे, तो कभी धरती पे आ जाते थे कभी पानी में, और इस तरीके से गजेंद्र, क्योंकि जल के पशु नहीं है, तो गजेंद्र का मन का बल खत्म, बुद्धि का बल खत्म, इंद्रियों का सारा बल खत्म हो गया। नेचुरल है, बहुत समय तक एक चीज के लिए कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसका मन भी हार मान जाता है, मन का बल खत्म हो गया और इंद्रियों का बल खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि अभी आंख से ठीक दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, कान से ठीक सुनाई भी नहीं पड़ रहा है। वो होता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा थक जाता है, बोलते हैं दिखाई नहीं दे रहा है, देखने में कष्ट होने लगा उसको। तो अब गजेंद्र की नजर गई अपने स्वजनों के प्रति, क्योंकि गजेंद्र जो थे बहुत बड़े राजा थे हाथियों के, और जैसे एक बड़े मिनिस्टर के अंडर में छोटे मोटे मिनिस्टर रहते हैं, ऐसे इनके अंडर में भी बहुत सारे छोटे मोटे मोटे और हाथी थे, वो भी राजा थे, छोटे छोटे मंत्री थे। वो लोग अपना जोर लगा लिए गजेंद्र को बाहर निकालने के लिए, मगर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो गजेंद्र मन में विचार करने लगे कि कुत्ता करिणिया, जब ये बड़े बड़े लीडर मेरे को नहीं निकाल पा रहे तो ये हथनियां मेरी पत्नियां क्या करेंगी। स्त्री को तो ऐसे भी अबला बोला जाता है ना, कि ये तो वैसे ही अबला है, ये मेरे को कहाँ से निकालेंगी, तो बच्चों का तो वैसे ही छोड़ दीजिए। तब गजेंद्र मन ही मन भगवान की शरण में गए और प्राग जन्म अनुशिक्षितम, आप लोग सुने, जजाप परम्यम जाप्यम प्राग जन्म अनुशिक्षितम, जो परमम जाप्यम, जो जप करने योग्य है उसका जाप करना शुरू किए। तो कहाँ सीखे थे भाई, हाथी के शरीर में तो कोई स्कूल कॉलेज गए नहीं, तो सीखे कहाँ पर थे, तो प्राग जन्म पूर्व जन्म में इंद्रदुम महाराज के शरीर में जब थे तो इसी स्तुति से भगवान की आराधना किया करते थे, वो उनको याद आ गया, मतलब इसका बहुत अभ्यास किए थे। तो जब ये संघर्ष चल रहा था तो उस समय देवता लोग आया करते थे तमाशा देखने के लिए, ब्रह्मा जी आते थे, इंद्र आते थे, शिव जी आते थे, सब लोग आते थे तमाशा देखने के लिए। तो जो आता था उसके मन में एक ही प्रश्न होता था कि क्या, कौन हारा, जो आता था एक ही, आते आते रास्ते से पूछना शुरू, कौन हारा कौन हारा कौन हारा, तो जाके देखते थे नहीं अभी भी युद्ध चल रहा है, 1000 साल तक युद्ध चला था ना, तो जो आता था एक ही सवाल पूछा था कौन हारा। और कुछ आचार्य गण कहते हैं कि देवता लोग सोचते थे कि भाई ऑफिस का काम भी है, और कभी कभी कुछ खाने पीने के लिए चले आते थे, तो होके जब वापस आते थे फिर पूछे अरे कौन हारा कौन हारा कौन हारा, तो उस जगह का नाम पड़ गया कौनहारा घाट, कौन हारा, हाजीपुर के पास है वैसा मान्यता है। अब वैसे तो ऊपर के लोगों में सब लीला हुई है तो इसको कैसे हाजीपुर में हुई वो हम नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता, मगर जो भी हो तो सबके मन में एक जिज्ञासा होती थी कौन हारा कौन हारा। एक बार ऐसे ही मैं एक जगह एक कथा सुना रहा था तो मैं बोला अच्छा बताओ कौन हारा, तो अगर बोला जाए कि गजेंद्र हारा तो गजेंद्र नहीं हारा, बोला जाए ग्रह हारा तो ग्रह भी कहाँ हारा, भगवान सबसे पहले आके सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार किए है ना। तो मैं बोला कि अब बताओ कौन हारा, तो एक छोटा सा बच्चा था वो बोला कि मैं बताता हूँ, मैं बोला क्या, तो बोला कि भगवान हारे अपने भक्त की भक्ति के आगे कौन हारा, भगवान को आना पड़ गया, भगवान हारे। तो बहुत सुंदर ये स्तुति है हमारे गुरु महाराज, इसको गोपी गीत के बाद दूसरे नंबर पर रखे हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि गोपी गीत जैसे कोई गाता है या सुनता है तो तुरंत समाधि लग जाती है, और वैसे ही ये गजेंद्र की स्तुति है। इतना अद्भुत, इसके एक एक श्लोक इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। मैं कल आया तो मैं देख रहा था ब्रह्मचारी आश्रम में गया था तो सुबह के समय कई लोग गजेंद्र की स्तुति का पाठ कर रहे थे, मतलब कुछ दिन आप लोग सुने इसको तो उसमें से कई भक्तों की इच्छा हो गई कि हम इसको रोज पढ़ेंगे। तो ये श्लोक इतने अद्भुत हैं कि अगर इस पे मनन किया जाए और बैठ के इसको गाया जाए तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुरंत समाधि लग जाती है। तो यहाँ जो आज का श्लोक है इसमें गजेंद्र कह रहे हैं सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाय उक्ताय सदा भाषाय ते नमः, कह रहे हैं सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे, गुण का यहाँ पर अर्थ है इंद्रियों के विषय। तो जितने भी इंद्रियों के विषय है वो भगवान सप्लाई करते हैं, अगर भगवान सैंक्शन ना करें तो इंद्रियों का विषय किसी को नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान क्यों सैंक्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग भोग भोगना चाहते हैं, हमारा एक डिजायर है, और आज का डिजायर नहीं है, ये अनादिकाल का हम लोग का डिजायर है। जितने भी कंडीशंस सोल हैं, जितने बद्ध जीव हैं, तो उनकी इच्छा है प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की, भगवान से सेपरेट कुछ इंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान कृपा करके हमें वो फैसिलिटी दे देते हैं, हर शरीर में इंद्रियां दे देते हैं। जैसी उसकी इच्छा है, प्रभुपाद जी कहा करते थे, कोई व्यक्ति नंगा रहना चाहता है तो वृक्ष का शरीर दे देते हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा मांस खाना चाहता है तो शेर का शरीर दे देते हैं। एक चित्र भी भगवद गीता में बनाया गया है कि उसमें दिखाया है इस चीज को। तो जैसी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को भोग भोगने के लिए भगवान सैंक्शन कर देते हैं, एक इंद्रियों का सेट देते हैं, अलग प्रकार की आंख, अलग प्रकार का कान, अलग प्रकार की नाक, सूंघने की शक्ति, सब कुछ रहती है उसमें। मगर यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे। अब सॉकेट तो दे दिया, उसमें करंट पीछे से भगवान देंगे, वो आगे से प्लग भी भगवान का ही है। मतलब इंद्रियों का जो विषय है, हम आंख से किसी रूप को देख रहे हैं तो रूप को देख पाते हैं जब भगवान सैंक्शन करेंगे। यदि भगवान थोड़ी वोल्टेज कम कर देते हैं तो चश्मा लग जाता है, और बिल्कुल वोल्टेज बंद कर देते हैं तो सॉकेट रहता है, ये आंख रहेगी एज इट इज, मगर इसमें देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। कान रहता है, वो थोड़ी वोल्टेज कम कर देते हैं तो मशीन लगानी पड़ती है, और बिल्कुल वोल्टेज बंद कर देते हैं तब सुनाई नहीं पड़ता, चाहे कितना मशीन लगा लें। तो ऐसे ही संपूर्ण शरीर की हर इंद्रियों को भगवान चला रहे हैं, और उसका जो इंद्रियों का विषय है वो सप्लाई भी भगवान दे रहे हैं। उनके सैंक्शन के बिना ना देखने को रूप मिलेगा, ना सुनने को शब्द मिलेगा, ना छूने को कुछ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहे सर्व इंद्रिय गुणादृष्टे और सर्व प्रत्यय हेतवे। प्रत्यय का मतलब यहाँ पे ज्ञान। तो सभी जो हम देखे, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज को देखते हुए भी देख नहीं पाते, पश्चिन अपि न पश्यति बोलते हैं ना, आंखों के सामने है फिर भी नहीं देखे। और विशेष रूप से यदि शरीर से भगवान चले जाएं, आत्मा और परमात्मा, आत्मा भगवान का अंश और परमात्मा स्वयं भगवान, यदि शरीर से भगवान चले जाते हैं तो सारे सॉकेट रहते हैं मगर व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता। मान लीजिए किसी का दादा मर जाए, यहाँ पर पड़ा है दादा, और कोई व्यक्ति उसको देखे बोले दादाजी जागो देखो मेरे को, देख सकता है? है? अभी नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? है? क्योंकि भगवान परमात्मा चले गए, उनका अंश जीवात्मा चला गया। तो कह रहे सर प्रत्यय हेतवे, जितना ज्ञान है उन इंद्रियों से हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया जो है, और छठा कौन, ग्यारहवा मतलब मन, तो ये सारी इंद्रियों को पीछे से भी सप्लाई भगवान का ही है। यदि कनेक्शन भगवान का ना हो उसमें, तो व्यक्ति देखते हुए कुछ नहीं देख सकता, सुनते हुए कुछ नहीं सुन सकता। हमारे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि कथा में वो एक एक भैरा आके बैठ गया, तो सुन नहीं सकता था, तो कथा एक घंटे चली, खूब सुना नहीं, मतलब सब लोग सुने, सब लोग कथा पूरी हो गई, उसके बाद वो भैरा बोलता है, आप सब लोग एक घंटे से चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो इतना बड़ा साउंड सिस्टम लगा, कथा हो गई, इतने भक्त कथा सुन लिए, महाराज इतनी कथा कह लिए और तुमको कुछ सुना ही नहीं दिया, तो क्या कारण? सर्व प्रत्यय हेतवे, भगवान ही पीछे उस ज्ञान को अर्जित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे, शब्दार्थ में लिख रहे हैं कि सभी संशयों का समाधान भगवान से ही हो सकता है, और जिनके बिना सभी असमर्थताएं तथा सारे संदेह हल नहीं किए जा सकते, उन भगवान को गजेंद्र प्रणाम कर रहे हैं। हर श्लोक में बार बार नमः नमः नमः, मतलब हर शब्द के साथ लगेगा, सर्व 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 इंद्रिय गुण दृष्टे नमः। हम नमस्कार करते हैं उनको जिनसे सारी इंद्रियों का विषय मिलता है। सर्व प्रत्यय हेतवे नमः, हम नमस्कार करते हैं उनको जिनसे सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति करते हुए कह रहे हैं। और तो भगवान के बिना किसी के संशय सारे दूर नहीं हो सकते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासी तत्सुणु। कह रहे मुझ में आसक्त होके, मैं आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, योग में लगो, भक्ति योग में लगो, और कैसे? मदाश्रय, मेरे आश्रय में रह के लगो। तो उससे क्या होगा पूछे अगर अर्जुन, तो कह रहे असंशयम समग्र माम, कह रहे असंशय तुम्हारा कोई संशय नहीं रहेगा। देखिए ज्ञान केवल कहने सुनने से नहीं होता, उसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा रोल रहता है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ, और युधिष्ठिर महाराज का मोह दूर करने के लिए वहां कौन कौन खड़ा था? व्यासदेव समझा रहे थे कि देखो ये सब तो धर्म के लिए युद्ध हुआ, तुम इसके लिए शोक मत करो। कह रहे मैं राजगद्दी पे बैठूंगा ही नहीं, क्यों? मेरे को राजा बनाने के चक्कर में इतना खून बहाया गया, इतना लोगों को कष्ट हुआ, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, हम नहीं बैठना चाहते। व्यासदेव समझाए, साक्षात भगवान समझाए। भगवान भी युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझा समझा के हार गए। क्यों? बाहर से समझा रहे हैं मगर अंदर से उनके संशयों को दूर नहीं होने दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोल भगवान का है। उसके बाद भगवान लेके गए भीष्म पितामह के पास, बोले कि पितामह की बात तो समझ में आएगी? बोले हाँ, वो समझ में आ जाएगी। अब भीष्म पितामह वही बात बोले तो युधिष्ठिर महाराज को हृदय में रह के भगवान समझने की शक्ति दिए, समझ गए। तो प्रहलाद महाराज के आप लीला में भी सुनेंगे कि जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से डायरेक्ट पूछता है कि ये सब तुमको गड़बड़ चीज कौन सिखाया, विष्णु भक्ति की बातें, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, किस प्रकार से श्लोक है कि ना दूसरों के समझाए समझा सकता है, मती ना कृष्णो परतो स्वतोवा मिथो भी पद्यत गृहव्रता नाम। कह रहे मती न कृष्णे, कृष्ण में मती नहीं हो सकती। कैसे? मती न कृष्णे पर तो दूसरों के समझाने से भी मती कृष्ण में नहीं जाएगी। और विशेष रूप से उनका इशारा था कि ये शंड और अमर्ख, ये मेटीरियलिस्टिक गुरु लोग हैं। अब तुम सोच रहे हो कि ये मेरे को गुरुकुल में पढ़ा दिए, क्यों उनको डांट रहे हो फालतू में? ये लोग जो खुद इंद्र तृप्ति में आ सकता है, ये लोग समझा देंगे और मन कृष्ण में लग जाएगा? हो नहीं सकता। मती न कृष्णे पर तो, और स्वतोवा कोई बोले तुम्हारा अपना अभ्यास होगा कुछ, तो कह रहे ना स्वतोवा, ये अपने से भी मती कृष्ण में नहीं लग सकती। तो फिर कैसे तुम्हारी लग गई? भाई दोनों की मीटिंग से हो जाएगी, वो सिखाने वाला है सीखने वाला है दोनों से हो जाएगा। तो कह रहे मती न कृष्णे पर तो स्वतोवा मिथो भी पद्यत, मिथो यानी दोनों मिलके, अगर समझाने वाला समझाए समझने वाला भी वहां पर उपस्थित, तो दोनों मिलके खूब मीटिंग कॉन्फ्रेंस सब कुछ करें कि हम समझ जाएंगे कृष्ण को, या मती कृष्ण में लग जाएगी। कह रहे हैं ऐसे गृही व्रता नाम, घर गृहस्थी का व्रत लेके जो रहते हैं इंद्र तृप्ति में आ सकते हैं हिरण्यकशिपु, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की मती कभी कृष्ण में नहीं लग सकती। तो देखिए समझना समझाना एक एक्टिविटी है मगर उसमें भगवान का बहुत बड़ा रोल है। जब तक भगवान, कभी कभी कई भक्त डिस्टर्ब होने लगते हैं इस चीज से कि हम एक व्यक्ति को कुछ समझा रहे हैं, ये भक्त है इसको समझना चाहिए इस बात को, ये समझ क्यों नहीं रहा? कई दिन समझाते रहते हैं, कई बार समझाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं और परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं कि क्यों नहीं समझ रहा, मगर क्यों नहीं समझ रहा? जब तक भगवान उसको नहीं समझाएंगे हृदय में रह के, तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। भगवान की कृपा की आवश्यकता है, सब चीज के पीछे भगवान की कृपा की आवश्यकता है। कह रहे सर्व प्रत्यय है तवे, जितना ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर पाता है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है तो पूर्व शरीर की सारी बातें भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता। अच्छा कुछ मेटीरियलिस्टिक प्लान्स बनाते हैं, उस प्लान्स के ऊपर चलना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मेरी ये योजना है, और उन योजनाओं को लेके मर जाता है, उन योजनाओं के अनुसार अगला शरीर मिलता है, मगर अगला शरीर प्राकृतिक शरीर ग्रहण करते ही वो सब कुछ भूल जाता है, उसको नहीं याद रहती अपने पूर्व जन्म की योजनाएं, मगर भगवान हृदय में रह के उसको याद दिलाते हैं, पूर्व जन्म में तुम मांस भोगना चाहते थे, तुमको मैं शेर का शरीर दिया, अब खाओ, अच्छे से खाओ, सुखी होके दिखाओ। तुमको ऐसा लगता है ना कि मांस खा के मैं सुखी होऊंगा, तो मैं तुमको ऐसा शरीर दिया, और तुमको लगता है कि नंगे रह के सुखी होऊंगा, मैं तुमको पेड़ का शरीर दिया, नंगे रहो, देखो नंगे रहने में कितना सुख मिलता है सर्दी में, ऐसे पेड़ों को इतना दुख नहीं होता है सर्दी में। तो इस तरीके से भगवान ही हृदय में रह के उसको याद दिलाते हैं पूर्व जन्म की तुम्हारी क्या क्या योजनाएं थी। और जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस व्यक्ति को भगवान अपने आप को भुला भी देते हैं। लो सतत मुझको भूल जाओ, भूले ही रहो, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाओ, दूसरे से तीसरे में जाओ, तीसरे से चौथे पशु बनो, कीड़ा मकोड़ा बनो, भूले रहो मेरे को, यदि यही तुम्हारी इच्छा है। तो भगवान ऐसा करते हैं, मगर साथ में आगे के श्लोकों में आप सुनेंगे गजेंद्र कह रहे हैं माद्रिक प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमोलाय। कह रहे माद्रिक मेरे जैसा पशु, माद्रिक प्रपन्न मेरे जैसे शरणागत पशु को, तो पशु कहने से मतलब है इंद्र तृप्ति में आसक्त, मेरे जैसे इंद्र तृप्ति में आसक्त शरणागत भक्त को आप मुक्त कर देते हैं, ये आपका स्वभाव है। यदि शरणागत हो गया, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, इस पशुपाश से वे मुक्त कर देंगे। पशुपाश मतलब कर्म बंधन या फिर अज्ञान का जो बंधन है उससे मुक्त कर देते हैं। क्यों मुक्त कर देते हैं भाई, कैसे मुक्त कर देते हैं भगवान पूछे, तो कह रहे हैं मुक्ताय, आप स्वयं मुक्त हैं इसलिए मुक्त कर देते हैं। तो भगवान मान लो पूछे कि भाई मुक्त तो बहुत सारे लोग होते हैं मगर चले जाते हैं हिमालय में चुपचाप रहने के लिए, तो उन लोगों का क्या, हम भी अगर उसी स्वभाव के हो, तो कह रहे हैं मुक्ताय भूरी करुणाय, आपके अंदर बहुत करुणा है। तो वहां आप लोग सुनेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतनी करुणा है कि हम लोग भगवान को शरणागत नहीं होते, बदमाशी करते रहते हैं, और भगवान हृदय में रह के साधु संतों के माध्यम से, गीता भागवत के माध्यम से, कभी कभी खुद अवतार लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमको बार बार बोलते हैं बेटा शरणागत हो जाओ, अब हो जाओ। हम कहते हैं नहीं होंगे, अभी भी नहीं होंगे, फिर बोलते हैं अब हो जाओ, अब हो जाओ, अब हो जाओ। भगवान इसलिए कह रहे हैं भूरी करुणा, बहुत करुणा है भगवान के हृदय में कि किसी तरह इस जीव के दुखों का नाश हो जाए। वो बोले कि अच्छा हो सकता है कोई दयालु बहुत हो, उसको बड़ी दया आती हो दूसरे का दुख देख के, मगर आलसी हो, तो कह रहे हैं माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमो लयाय। अलियाय मतलब आप में आलस नहीं है, मेरे को पूरी आशा है कि आप तुरंत गरुड़ पे सवार होके आचेंगे मेरी रक्षा करने के लिए। तो भगवान देते हैं हृदय में मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान भी देते हैं और अपोहनम भुला भी देते हैं। जो व्यक्ति भूलना चाहता है भगवान को, उसकी इच्छा है कि मैं भगवान को भूल जाऊं, तो भगवान उसको हर वो सुविधा प्रदान करते हैं जिससे कि तुम भगवान को भूल जाओ और संसार में सड़ते रहो। तो गजेंद्र गरे सर्व इंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असता छाया उक्ताय सदा भाषाय ते नमः। और ये जो असता है, असता मतलब माया, ये जो जड़ जगत है असत है, ये सत नहीं है। सत मतलब परमानेंट और असत मतलब टेम्पररी, इसकी एग्जिस्टेंस है मगर ये टेम्पररी रूप में है। कह रहे हैं असता छाया उक्ताय, ये जो असत है इसको छाया कहा जाता है। प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता से, छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, ये दुर्गा जो है क्या है, भगवान की छाया है। और छाया है मतलब क्या, पीछे रहती है भगवान के। और भागवत में लिखा गया विलज्ज मानिना, ये बड़ी शर्म आती है इसको भगवान के सामने आने में। क्यों शर्म आती है, क्योंकि भगवान के जीवों को भगवान से दूर रखती है और उनको दूर रहने के लिए सारी सुविधाएं देती है और बहुत पिटाई भी करती है। ऐसा ही नहीं है कि केवल भूलने की सुविधा देती है, साथ में पिटाई भी करती है। ये माया का काम कैसा है, तो चेतन महाप्रभु कहते हैं कि दंड देन राजा ते नदी ते डुबाए, कभू स्वर्ग उठाए कभी नर के डुबाए, दंड देन राजा ते नदी ते डुबाए। पहले जमाने में राजा किसी को दंड देता था तो आदेश दे देता था इसको ले जाओ नदी में डुबाओ, तो सैनिक लोग लेके जाते थे तो उसको ऐसे नदी में डुबाते थे, जैसे नदी में किया छटपटाने लगता था, तो बहुत देर छटपटाता था तो एक बार बाहर निकालते थे, सांस लेता था तब तक वापस नीचे। तो इस संसार में हम सबके साथ ऐसे ही हो रहा है क्या, कभी स्वर्ग उठाए कभी तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, आनंद से सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, और कभी नरक के डुबाए, और कभी कभी एकदम हर जगह से दुख संकट परेशानी, यहाँ से भी परेशानी वहां से भी परेशानी, सब जगह से परेशानी। ये काम है भगवान की माया का। जैसे राजा के आदमी दंड देने के लिए कभी डुबोते हैं छटपटाते तो बाहर निकालते हैं, वो सोचते हैं अब तो सब कुछ अच्छे से चलेगा, तब तक वापस अंदर डाल देते हैं, वापस उसी दुख के संसार में। इसलिए माया देवी जो है भगवान के सामने आते हुए लज्जा महसूस करती है। क्यों लज्जा महसूस करती है, कि भगवान के जीव हैं और इनका भगवान से शाश्वत संबंध है, भगवान के अंश होने के नाते ये भी सच्चिदानंदमय है, आनंदमय अभ्यासात, ये आनंद में रह सकते हैं और मैं इनको दुख देती हूँ, इनकी पिटाई करती रहती हूँ। मैं गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि कभी सब्जी वाला जो होता है तो ठेले पे बहुत सारी सब्जियां रखता है, हरे हरे पालक के पत्ते रखेगा, क्या क्या रखेगा, और पास में कोई गाय वाय पशु होता है तो वो जब हरा हरा पत्ता देखता है तो सोचता है शायद मेरे लिए रखा गया है। उसके लिए रखा नहीं है, उसने बेचने के लिए रखा है, मगर उसको भ्रम हो जाता है कि शायद मेरे लिए ही रखा गया है। मगर जैसे ही जाके उसमें मुंह मारने लगेगी तो जो सब्जी वाला होता है केवल सब्जी नहीं रखता, साथ में एक लाठी भी रखता है। तो इधर मुंह मारने का प्रयास करेगा उधर जम के लाठी पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जब भी हम इस संसार को भोगने का प्रयास करते हैं, जिस वस्तु को भोगने का प्रयास करेंगे, तो माया देवी वो वस्तु दिखाती है सामने, और जैसे ही मुंह लगाने लगते हैं लाठी पड़ती है, तो दुखता है हम लोगों को। कह रहे हैं असता छाया योगता या सदा भाषा ये ते नव, मानो भगवान पूज्य गजेंद्र आज तक तो ये सब असली दिखाई पड़ रहा था। कह रहे कि अभी तो तुम बोल रहे हो कि ये सब असत है, असत्ता छाया योगता है, ये सब आपकी छाया मात्र है, तो अभी तक तो तुमको ये जल में कीड़ा सब सत दिखाई पड़ रहा था ना, अभी तुमको अपनी पत्नी असली दिखाई पड़ रही थी, नहीं दिखाई पड़े, और पत्नी तो ही ना, पत्नियां थी गजेंद्र की, ये सब हथनियां सच दिखाई दे रही थी, ये सब कुछ तुमको इतना सत लग रहा था कि इतना एब्जॉर्ब थे कि भूल गए थे ना हमको। तो कह रहे हैं कि ये सत्य इसलिए दिखाई पड़ रहा था क्योंकि सदा भाषाय ते नमः, क्योंकि इसमें आप हैं, आपका टच है, इतना इतना निकटतम संबंध है माया का भगवान से कि कभी कभी इसका वर्णन भी भगवान के रूप में कर दिया जाता है। आप कई जगह भागवत में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत का वर्णन भी भगवान के रूप में कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे मान लीजिए ये बोला जाए, मान लीजिए क्रिकेट का मैच हो रहा है, और मैच में क्या है कि जो खिलाड़ी लोग हैं, भारत के खिलाड़ी जीत गए, मैच जीत गए, मगर बोला क्या जाता है, भारत जीत गया, ये बोला जाता है। तो भारत जीत गया मतलब क्या जीत गया, वो मैप जीत गया, क्या जीत गया, वो फील्ड पर भारत के खिलाड़ी जीत गए, मगर उस समय भारत के खिलाड़ी और भारत का इतना निकटतम संबंध है कि उसको एक ही रूप में वर्णन किया जाता है। या ऐसे बोला जाए कि जो मंच है वो एकदम हाहाकार कर रहा है ना, तो मंच हाहाकार कर रहा है मतलब क्या है, ये टेबल से शोर मच रहा है, कुर्सी से शोर मच रहा है, कहाँ से शोर मच रहा है, वो मंच पर जो लोग बैठे हैं वो हाहाकार कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मगर जो मंच पे बैठे हैं उनका मन से इतना निकटतम संबंध है इस समय कि उसमें सत्य का भास हो रहा है, है? वो है नहीं, वो मंच नहीं कुछ बोल रहा, मगर फीलिंग ये आ रहा है कि जैसे मंच ही, बोलने में यही बोला जाएगा कि मंच हाहाकार कर रहा है। उसी प्रकार से भगवान को और इस माया का, इस सृष्टि का इतना निकटतम संबंध है कि भगवान के सत्य होने के कारण ये माया सत्य प्रतीत हो रही है नहीं, मगर सत्य प्रतीत हो रही है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, जैसे कोई उल्टा वृक्ष हो, उल्टा वृक्ष मतलब सीधे वृक्ष की परछाई, उसकी शैडो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जैसे नदी के उस पार एक वृक्ष है, और इस पार से यदि देखा जाए तो वृक्ष दिखाई देगा, और पानी के अंदर एक उल्टा वृक्ष दिखाई पड़ेगा, और वृक्ष जैसा है ज्यों का तो दिखाई पड़ रहा है, जड़ दिख रही है, टहनियां दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, पानी में भी वैसा ही दिखाई पड़ रहा है ना, मगर जो नीचे है ऊपर है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अपना शीशे में शक्ल देखते हैं तो आंख की जगह दिखाई दे रही है, कान कान की जगह दिखाई दे रहे हैं, हाथ हाथ की जगह दिखाई दे रहे हैं, मगर एक अंतर हो चुका है, क्या, जब हम राइट हैंड उठाएंगे ना उसमें लेफ्ट हैंड उठता है, और लेफ्ट उठाएंगे तो उसमें राइट हैंड उठता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इस संसार में हम जिस चीज को देख रहे हैं वो भगवान के जगत की रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस जगत को स्टडी करके हम कुछ आभास ले सकते हैं भगवान के जगत का, क्यों, ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो जैसे इस जगत में संबंध है ऐसे भगवान के जगत में भी संबंध है, जैसे इस जगत में चीजें हैं भगवान के जगत में भी हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया, वहां पर लव हो गया और यहाँ पर लस्ट हो गया, वो राइट का लेफ्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, वहां पर सब कुछ सुखमय हो गया और यहाँ आते ही सब कुछ दुखमय हो गया, बस छोटा सा अंतर है, देखने में ज्यों का त्यों है, सेम है। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि ये सब समाज देख के, मेरी पत्नियां, ये सुख जो हम भोग रहे थे, ये सब देख के भी कहीं ना कहीं एक आभास लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि आपके जगत में भी कितने संबंध होंगे, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी संबंध है, इसका मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सुख है। जब यहाँ पानी में खेलने में सुख मिल रहा है तो वहां भी इसका मतलब बहुत भारी सुख होगा ना, या साधारण जल क्रीड़ा अगर सुख दे रही है, ये जड़ आनंद इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर परमानंद जो प्रेमानंद है या सेवा का आनंद है वो कितना ऊंचा होगा। तो यहां से वहां का कुछ हिस्सा आप समझ सकते हैं, मगर ये कह दे कि इसको देख के पूरा पूरा उसको समझ सकते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो विशेष रूप से हम मायावादी होते हैं तो इस जगत को देख के उस जगत को अगर समझने का प्रयास भी करें तो उसमें भ्रम कर जाते हैं, क्योंकि केवल नेगेशन की विधि से खोज करते हैं, न इति है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उससे भी समझ में नहीं आएगा। और मात्र इसकी रिफ्लेक्शन उसको मान लें, उसकी रिफ्लेक्शन इसको मान लें और उसी से समझ लें कि हम उसको समझ जाएंगे, भगवान के धाम को समझ जाएंगे, तो भी पूरा पूरा नहीं समझ सकते, मगर कुछ बात समझ में आ सकती है। पूरा समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ अंतर है। यहाँ पर जो देह है वो प्राकृतिक देह है, दुख देने वाला है, इसलिए जो मायावादी होते हैं वो चाहते नहीं कि भगवान के धाम में शरीर मिले। प्रभुपाद जी लिखते हैं वीत राग भय क्रोध में, कि राग तो है ही खराब, इस संसार में कोई बहुत रचा पचा है तो भगवान के धाम जाना तो छोड़ ही दीजिए। और दूसरा वीत राग भय, एक भय रहता है, क्या भय रहता है कि इस संसार में यदि शरीर है और इस शरीर इतना दुख देता है तो भगवान के धाम में भी यदि शरीर होगा तो दुख देने वाला होगा, ये भय रहता है लोगों को। अगर इस संसार के संबंध सारे दुख देने वाले हैं तो वैसे ही भगवान के धाम में भी यदि संबंध होंगे तो दुख देंगे, इसलिए वहां की कल्पना जब करते हैं तो उसको संबंधहीन देखते हैं, शरीरहीन देखते हैं, वहां के शरीरों के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। मगर यहाँ को देख के हम वहां का कुछ समझ सकते हैं, बाकी समझना पड़ेगा हमें वैदिक शास्त्रों से, साधु संतों से सुन के समझना पड़ेगा, मगर कुछ आभास होता है। तो गजेंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि असता छाया योक्ता यह, ये असत है, आपकी छाया है, इसको छाया कहा गया है, मगर सदा भासाय ते नमः, आपसे इसका संबंध होने के वजह से ये एकदम सत जैसा हमको प्रतीत हो रहा है, ये पत्नी बच्चे ये सुख वगैरह सब अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था? क्योंकि इसका आपसे निकटतम संबंध है। तो बहुत सुंदर ये स्तुति गजेंद्र कर रहे हैं और हर श्लोक में भगवान को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, और गजेंद्र की स्तुति को सुन के भगवान प्रकट होंगे। तो इसमें ये चीज पता चल रही है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। कई कई जगह पर ऐसा आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं कि देवता लोग गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते थे। ऐसे अगले श्लोक में गजेंद्र बोल रहे हैं कि नमो नमस्ते अखिल कारण आया, तो बोले कि अखिल कारण जो है, मतलब सृष्टि की रचना करने वाले है ना, तो वो आके मेरी रक्षा करें। तो मान लो ब्रह्मा जी आते हैं कि अच्छा चलो शायद मुझको बुला रहा है, तब तक बोल दिया निष्कारण आया, जिसका अपना कोई कारण नहीं, वो आके मेरी रक्षा करे, बुला रहे मेरे तो पापा है वो भगवान नारायण, वहां से मेरा जन्म हुआ, तो नहीं जमा। तो ऐसे कई देवता आते थे ये सोच के कि शायद हमारा गुण बोल रहा है। तो यहाँ पर देवी दुर्गा को लग सकता है कि शायद मेरे को बुला रहे रक्षा करने के लिए, माँ को पुकार रहा है। तो कह रहे असता छाया योक्ताया, जो असत हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, वो ही इस माया के चक्कर में पड़ते हैं। भगवान के भक्त कभी इस माया के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो भगवान को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुण लगते थे देवताओं को, मगर उसके बाद उनको इतना तुच्छ बता देते थे कि सारे देवता मिलके मीटिंग कर रहे थे ऊपर आकाश में खड़े तमाशा देखते हुए, बोल रहे कि अगर हमको पुकार लिया होता तो आज इतने हम जाके बचा लेते इसको, अरे हाथी भी कोई बहुत मुश्किल चीज है बचाना, हम अभी जाके बचा लेते, मगर इतना बदमाश है कि कभी हमारा कुछ गुण तो बोल ही नहीं रहा ठीक से, और उसके बाद बोल देता है कि अति तुच्छ है हम लोग। अरे हमको पुकार कह रहे यस्य ब्रह्मादया देवा, कैसे आगे नाम रूप विभेदेना फलगव्य च कलह कृति, कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता जो हैं जिनकी फलगु कृति है, केवल उनकी फलगु का एक अर्थ विकार भी होता है, अत्यंत तुच्छ, जिनकी अत्यंत तुच्छ कृति है ब्रह्मा आदि देवता, वो भगवान आके हमारी रक्षा करे। तो गजेंद्र तो सारे के सारे देवता बोले कि एक तो हमको बुला नहीं रहे और दूसरा हमको इतना तुच्छ बता दिया, आज तो निश्चित रूप से मरेगा। जब इस प्रकार से सब देवता आपस में बात कर रहे थे तो उसी समय भगवान गरुड़ पे बैठ के आ गए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। देखिए पूरी स्तुति में गजेंद्र किसी का नाम नहीं बोले, एक निर्विशेष स्तुति की है, केवल गुणों की चर्चा की है, मगर वो गुण केवल एक व्यक्ति पर लगे, बाकी किसी के ऊपर वो सारे गुण नहीं थे, केवल एक व्यक्ति के ऊपर वो सारे गुण बराबर पड़ रहे थे, वो कौन है? वो श्रीहरि है। तो अपने गुणों का श्रवण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए गरुड़ पे सवार होके आए, और जब दूर से गजेंद्र भगवान को आते हुए देख लिए तो वहां जल में एक कमल का पुष्प था, अपनी सूंड में उस कमल के पुष्प को उठाए और उनका पूर्व जन्म का अभ्यास था, प्राग जन्म अनुशिक्षितम, उनका पूर्व का अभ्यास था क्या, भगवान की पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे और कुछ स्तुति बोलते थे, तो स्तुति तो जो आप लोग सुन रहे हैं उसको बोल ही रहे हैं, और दूसरा अभ्यास क्या था, फूल चढ़ाने का। तो जैसे फूल देखे तो वहीं सूंड में फूल को लेके आकाश में आते हुए भगवान को अर्पण करने लगे, और अत्यंत कष्ट की स्थिति में है, पैर वो ग्रह पकड़ा हुआ है, कितना खून निकल चुका, मन में बल नहीं है और इंद्रियों में कोई बल नहीं है, शरीर में बोलने की क्षमता खत्म हो चुकी है, एकदम कष्ट में बोल रहे, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, अत्यंत कष्ट में बोल रहे हैं, जिस मंत्र से भगवान को अर्पित करते थे फूल उसी मंत्र को बोल रहे हैं, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। तो जैसे ही नारायण का नाम बोले भगवान बोलते हैं, अरे गरुड़ कितना धीरे चलता है। अच्छा तो सुखदेव गोस्वामी बोले एक बार स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि क्या स्पीड है, तो क्या स्पीड है, तो कह रहे छंदमय, छंद का अर्थ होता है इच्छा, जैसे बोलते हैं स्वच्छंद विहार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार घूमना फिरना, तो छंदमय मतलब इच्छामय, श्री हरि की इच्छा के अनुसार गरुड़ जी की स्पीड हो सकती है, मगर भगवान वास्तव में इच्छा ही नहीं की उनकी स्पीड बढ़ाने की, वो इतना हाई स्पीड व्हीकल पे बैठ के आ रहे अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए, मगर जैसे ही गजेंद्र इतना गुण बोले तो भगवान अपना धाम छोड़ के आ गए, मगर जैसे ही नाम पुकारे, नाम का एक अक्षर पुकार दिए, भगवान गरुड़ पे से कूद गए, इतना विफल हो गए भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए, इतना चिंतित हो गए, इतना व्यग्र हो गए कि उस गरुड़ को भी स्लो स्पीड का मान के गरुड़ पे से कूद गए, और कूद के आके नीचे आए जब, तो भागवत के अनुसार पहले भगवान ग्रह और गज को पानी से निकाले, तो चतुर्भुज भगवान है तो कुछ हाथ तो गजेंद्र को पकड़े, अच्छा अगर ऐसे ही खींच दिए होते तो गजेंद्र को पैर में बहुत कष्ट होता ना, वो ग्रह का वजन भी उसको उठाना पड़ता, एक हाथ से उस ग्रह को छू के भी बाहर निकाले, तो चार हाथ है भगवान के, दो हाथ तो है नहीं, तो दो तीन हाथ गजेंद्र को लगाए, ग्रह को लगाए, तब बाहर निकाले और तब उस ग्रह का मुंह फाड़ दिए, उस ग्रह को देवल मुनि के शाप से मुक्त कर दिए, और इधर गजेंद्र को तो स्पिरिचुअल बॉडी दे दी है। वहां पर आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं कि भगवान गजेंद्र को सशरीर, उसी शरीर को चतुर्भुज कर दिए और अपने साथ गरुड़ पे बिठा के लेके चले गए। बोले कि वहां पर छुड़वाया क्यों नहीं शरीर, इस संसार का नियम है त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सर्जना, ये शरीर छोड़ के स्पिरिचुअल बॉडी से जाया जाता है, तो बोले शरीर क्यों नहीं छुड़वाए। तो भगवान मन में सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे कि वो बेचारा हाथी इतना कष्ट में ये प्रभु की स्तुति किया और वो भगवान आके पहले उसका मर्डर कर दिए, फिर कौन जानते कि वैकुंठ लेके गया कहाँ लेके गए, है ना, इस शरीर इस संसार में तो शरीर को दिखा के कोई चमत्कार कर दो तो बाबा कितना प्रसिद्ध हो जाता है, तो भगवान इसीलिए वो है कि नहीं, तो शरीर को मारे नहीं, अगर वहां पर शरीर को खत्म कर देते, वहां लाश पड़ी रहती तो सब लोग बोलते क्या किया ये विष्णु, वहां गजेंद्र की तो लाश पड़ी हुई है देखो है? तो भगवान गजेंद्र के उसी शरीर को स्पिरिचुअल करके चतुर्भुज करके अपने साथ ले गए। अब एक दूसरा सवाल भी उठता है क्या, कि वो ग्रह जिसका उद्धार भगवान पहले किए ना, वो सुदर्शन चक्र से पहले स्पर्श ग्रह का किए, ग्रह का उद्धार पहले किए, मगर उसको वापस हू नाम का गंधर्व बना के भेज दिए। तो आचार्यगण प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों किए भगवान, भाई उसको भी मुक्त करके अपने धाम लेके जाना चाहिए था, है कि नहीं, भाई भक्त का पैर पड़ा, और बोलते ही हैं कि भाई ग्राहक का उद्धार सबसे पहले किए भगवान, तो भगवान वास्तव में क्या किए कि उसको अपने उसको वापस गंधर्व लोग भेज के इस गजेंद्र की लीला का प्रीचर बना दिए। बोले अब जाके सबको सुनाना गजेंद्र का धार। तो इस रूप में बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में, और हम लोगों को बहुत प्रेरणा देता है, विश्वास बढ़ाता है कि भगवान अपने भक्त की निश्चित रूप से रक्षा करते हैं। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास ही पालन, भगवान तो रक्षा करते ही हैं, मगर इस विश्वास का पालन करना, इस विश्वास को बढ़ाना भक्तों के संग से होता है, कथा कीर्तन से होता है, तो इस विश्वास को बनाए रखना उसको भक्ति बोलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रणंदे।
हरे कृष्ण जय।
कृष्णोत्तर का समय नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण, थैंक यू।